ओम शांति। ग्रुप नंबर 6। सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। बाबा कहते हैं, सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। इस समय अर्थात संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी आप आत्माएं हो तो सदा ये अपना स्वमान याद रहता है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना। पहले स्व का कल्याण और साथ साथ सर्व का कल्याण। तो ऐसे कल्याण करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। किसी के वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। दुनिया का वायुमंडल है अकल्याण का और आपका वायुमंडल है कल्याण करने का। तो अकल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली या कल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली? तो आपके ऊपर औरों का वायुमंडल प्रभाव नहीं कर सकता। वो कमजोर है और आप शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली कमजोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है, कमजोर शक्तिशाली के ऊपर नहीं। तो बाबा कहते हैं, कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल हो लेकिन आप सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो। तो जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। तो वायुमंडल को बदलने वाले हो। चैलेंज किए है ना कि हम विश्व परिवर्तक हैं। तो कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी आप आत्माएं हो और कल्याणकारी बाप है। तो कितनी शक्ति हो गई, समय की भी शक्ति, स्वयं की भी शक्ति और बाप की भी शक्ति। तो यह याद रखो कि दुनिया के लिए अकल्याण का समय है, आपके लिए कल्याण का समय है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है और आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है। तो सदा दिल में यह श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई की हुई। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, जैसे वर्तमान स्पष्ट है ऐसे ही भविष्य भी स्पष्ट है। शक्तियों को तो नशा होना चाहिए कि संगम युग विशेष शक्तियों का युग है। संगम पर ही बाप शक्तियों को आगे करते हैं। पांडवों को भी खुशी होती है ना कि शक्तियां आगे हैं तो हम आगे हैं ही। सदा मन में यही शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्मा है तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हो। क्योंकि पुरुष होना, आत्मा पुरुष है तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है, प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। इस समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ा सा धरनी हलचल में आई, कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदायी प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदायी। कोई भी दुख की घटना देखते हो सुनते हो तो दुख की लहर आती है। बाबा पूछते हैं, कभी पोतरा धोतरा दुखी होता हो तो दुख की लहर आती है। दुख धाम से न्यारे हो गए, संगम पर हो या कलयुग में हो, तो दुख धाम से किनारा कर लिया या कि थोड़ा थोड़ा दुख धाम से लगाव है। बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत رہیں گے. ذرا بھی ہلچل نہیں ہو تو اچل بھی ہو, اڈول بھی ہو, اٹل بھی ہو, کوئی اس نشچے سے ٹال نہیں سکتا. اچھا سبھی اڑتی کلا والے ہونا, اڑتے چلو اور اڑاتے چلو. تو بابا نے کیا کہا, سدا اسی سوان میں رہو. کس سوان میں؟ کہ میں وشو کلیانکاری آتما ہوں اور کلیان کرنا میرا کرتویہ ہے. کلیان کرنا میرا کرتویہ ہے, میرا سودھرم ہے, میرا آکوپیشن ہے, میرا ویوسائے ہے, میرا دائتو ہے, میرا فرض ہے, میری ذمہ باری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کلیانکاری باپ کے بچے, ماسٹر وشو کلیانکاری ہیں. تو بابا کہتے ہیں آپ کلیانکاری آتمائیں ہو تو پہلے چیک کرو کہ ہم نے سوئم کا کلیان کیا ہوا ہے. پہلے سو کلیانکاری, اس کے بعد پھر وشو کلیانکاری. تو سو کلیانکاری ارتھات کیا کہیں گے؟ سوئم کو پرورتن کرنا اور سوئم پر رحم کرنا, سوئم کو لائق بنانا, سوئم کو یوگ بنانا. جو بابا ہمارے سے چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے سمان بنے, ارتھات جیسا باپ ویسے بچے بنے. تو جیسے باپ گیان کا ساگر ہے, گروں کا ساگر ہے, سرو شکتیوان ہے, تو بابا چاہتے ہیں کہ آپ بچے بھی میرے جیسے بنو, ماسٹر گیان کا ساگر بنو, گروں سے سمپن بنو, ماسٹر سرو شکتیوان بنو. تو بابا نے کہا کہ سو کا کلیان کرنا ارتھات اپنے آپ کو ایسا بنانا. تو ہمیں پرسارتھ کر کے بابا ایسا بنانے کے لیے جو ہمیں انیک پرکار کی ودھیاں ہیں, یکتیاں ہیں, طور طریقے ہیں, ان کے مادھیم سے پرسارتھ کر کے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. کیونکہ سوئم ایسے بنیں گے تبھی ہم وشو کلیانکاری کا کام کر سکیں گے, کاریہ کر سکیں گے. یدی سوئم میں ہی کوئی کمی ہوگی تو بابا کا جو وشیش کاریہ ہے اور بابا ہمیں بھی اس کاریہ کے لیے اس میں ہم کو یوز کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے یوگ نہیں بن پائیں گے. تو سو کا کلیان کرنا ارتھات جو ہمارے وچار ہیں, بھاونائیں ہیں, ہماری فیلنگس ہیں, ہمارے بول ہے, درشتی ہے, برتی ہے, ہمارا سمبندھ سمپرک ہے, وہ سبھی شریشٹ ہو. کیسا ہو؟ شریشٹ ہو, مہان ہو, بےحد کا ہو, کلیانکاری ہو. تو پہلے سو کو بدلنا ہے, اس کے بعد وشو کلیانکاری کا پاٹھ بجانا ہے. تو جو سو کلیانی آتما ہوگی, جس نے اپنا کلیان کیا ہوگا, اس کی کچھ ایک نشانیاں ہوگی جس کے مادھیم سے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں, جج کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے لائق بنے ہیں یا ابھی ہمارے میں کچھ کمی کمزوری ہے. تو اس میں پہلی نشانی ہوگی کہ وہ جو آتما وشو کلیان کرے یا جس نے اپنا سوئم کا کلیان کیا ہوگا, وہ آتما سرو کھجانوں سے سمپن ہوگی, ماسٹر ہوگی. تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس گیان کا کھجانہ بھرپور ہے یا اس میں کچھ کمی ہے. کیونکہ پریکٹیکل جیون میں جو ورتمان سمے انیک پرکار کی سمسیاں آتی ہیں, ان سمسیاؤں کو فیس کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس پہلے گیان ہونا چاہیے. اگر پورا گیان نہیں ہوگا تو ہم اس میں سفل نہیں ہو سکیں گے. تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ماسٹر گیان سوروپ بنے ہیں, ہمارے پاس ہر پرکار کی گیان سے سمپنتا ہے, اسٹاک ہے. دوسری بات ہے سرو شکتیاں. بابا کہتے ہیں کہ میرا جو بھی کھجانہ ہے وہ آپ کے لیے ہے, آپ کو مل کیا ہوا ہے, آپ کو دیا ہوا ہے. لیکن وہ سرو شکتیاں ہمارے جیون میں हमारे यूज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको भी हमें देखना है कि समय पर कोई शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो उस समय जैसी परिस्थिति वैसी ही शक्ति की जरूरत पड़ती है। परिस्थिति हो कोई बात को सहन करने की, संभालने की, लेकिन हम उस समय सामना करने की शक्ति को यूज करेंगे तो सफल होंगे, नहीं होंगे फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि अपने जीवन में सर्व शक्तियों को अप्लाई करते हुए अपने आप को ऐसा योग्य बनाना है। तो पहली बात है कि सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न बनाना है, और दूसरी बात है कि जो ऐसी विश्व कल्याणकारी आत्मा होगी वो स्वराज अधिकारी होगी। उसके जो भी कर्मचारी हैं, चाहे मन है, बुद्धि है या संस्कार है या उसके स्थूल इंद्रिया हैं, उनकी वो मालिक होगी, उनके अधीन नहीं। क्योंकि जो अधीन होता है वो कुछ भी सफल नहीं हो सकता ना कोई काम करने में। तो बाबा कहते हैं आप इसके मालिक तो हो लेकिन लंबे समय से इनके अधीन रहे, इसलिए इनके वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय बाबा ने जो हमें स्वयं के बारे में समझ दी कि आप आत्मा इनके मालिक हो, जो आपके कर्मचारी हैं, साथी सहयोगी हैं, जो आपको कर्म करने के लिए मिले हुए हैं, इसलिए आप मालिक बनकर के इनको अपने अधिकार से यूज करो। अपने अधिकार में रखेंगे तो ये श्रेष्ठ कर्म करेंगे, यदि आप इनके अधीन हुए तो आपसे ये उल्टे कर्म कराएंगे। तो हमें अपने मन का, बुद्धि का, संस्कारों का मालिक बनकर के इनको यूज करना है, और जो स्थूल इंद्रियां हैं उनको भी अपने कंट्रोल में रखना है। तो दूसरी बात है कि जो विश्व कल्याणकारी आत्मा होगी वो आत्मा कैसी होगी, स्वराज अधिकारी होगी। उसका अपने ऊपर पूरा अधिकार होगा, अपने ऊपर अर्थात अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने कर्मचारियों के ऊपर। जैसे कोई राजा है, राजा अगर किसी कारण से अलबेला है तो उसके जो सेनापति है वो क्या करेगा, राजा को अपने अधीन करके या राजा को निष्कासित करके या उसको खत्म करके वो राज्य का मालिक बन जाएगा। और राजा यदि अलर्ट है तो वो राजा के आज्ञा पर चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय आप केयरफुल होकर रहेंगे, स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे तो आपकी इंद्रियां आपके अधीन होकर रहेंगे, आप जो चाहेंगे वो उनसे कार्य करा सकेंगे। और तीसरी बात है जो विश्व कल्याणकारी आत्मा होगी वो रहम दिल होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय सारे संसार में सभी आत्माओं के जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उन आत्माओं को निकालने के लिए या उन पर जो बाबा ने हमें कार्य दिया है वो कार्य करने के लिए हमारे अंदर रहम की भावना का होना बहुत जरूरी है। बिना रहम के हम ये श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकेंगे। तो हमें मालूम है कि वर्तमान समय सभी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। आत्माएं जो सुख शांति है, जो अविनाशी सुख शांति है, उसकी प्राप्ति के लिए वो चाहते हैं, लेकिन वो प्राप्ति के बारे में उनको बोध नहीं है। इसलिए दुनिया में जो स्थूल साधन सुविधाएं हैं, सेलिब्रेशन है, उनके माध्यम से अपने उस सुख को वो खोज रही है। तो बाबा कहते हैं आपको तो मालूम है कि स्थायी सुख शांति का आधार क्या है, तो उन आत्माओं के प्रति रहम दिल बनकर के उन आत्माओं का कल्याण करने के लिए जो आपके पास खजाना है, सच्चा सुख है, सच्ची शांति है, सर्व शक्तियां हैं, सच्चा प्यार है, सत ज्ञान है, उन आत्माओं को देने के लिए आपके अंदर रहम की भावना उत्पन्न हो कि ये आत्माएं भी इन प्राप्तियों से संपन्न बने। क्योंकि ये आत्माएं कौन है, हमारे अपने परिवार के मेंबर हैं, हमारे अपने भाई हैं। और हम सभी आत्माएं या हम बाबा के बच्चे इन सभी आत्माओं के पूर्वज हैं, कल्याणकारी हैं, ठीक है, एक बाप के बच्चे हैं। और चौथी बात है कि विश्व कल्याणकारी आत्मा दाता होगी, देने वाली होगी। क्या देने वाली होगी? सफा राहत देने वाली होगी। जो बाबा से हमको मिला हुआ है वो देने वाली होगी। तो बाबा ने जो हमारा कल्याण किया है, जिन चीजों से हमारा कल्याण किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वो सभी खजाने अन्य आत्माओं को दे करके उनको भी उनका कल्याण करें, उनको मालामाल बनाएं, उनको संपन्न बनाएं, उनके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं। तो बाबा कहते हैं इन आत्माओं को देने के लिए आपके पास तीन साधन है, वाचा, कर्मणा और मनसा। तो वाचा से देने के लिए बाबा ने कहा कि इन आत्माओं को ज्ञान धन का दान दो, उनको बाप का परिचय दो, बाप का पैगाम दो, उनको स्वयं के बारे में बोध कराओ, उनको श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाएं उसके बारे में उनको वो समझ दो। तो बाबा ने कहा कि बाचा से उन आत्माओं को ज्ञान धन का दान करके उनको भरपूर करना है, क्योंकि बिना ज्ञान के गति सदगति नहीं हो सकती है। तो पहली बात है कि बाचा से उनको ज्ञान धन का दान देना है, और दूसरी बात कर्मणा से हमारे प्रैक्टिकल जीवन ऐसी हो कि जो अन्य आत्माएं देखें तो उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो कि हम भी ऐसा कार्य करें, उनके लिए हमारे कर्म एक प्रेरणा के देने वाले हों। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे जब आपकी याद में रह करके या अपने श्रेष्ठ समान में रह करके एक अच्छी स्थिति में रह करके एक अच्छे पोजीशन में रह करके आप जो भी कर्म करते हो वो कर्म दूसरों के लिए एक आदर्श कर्म होते हैं। दूसरी आत्माएं आपके उन कर्मों को देख करके सीखते हैं। तो हमें कर्मों से गुणों का दान देना है, दूसरी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाना है। और तीसरी बात है मनसा। तो बाबा ने कहा कि मनसा के द्वारा जो सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा, तो उस मनसा के द्वारा पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाओ। तो बाबा ने मनसा के लिए जो हम सभी को खजाना दिया हुआ है, सामान दिए हुए हैं, तो बाबा ने कहा उस सामान में रह करके श्रेष्ठ स्वरूप में रह करके संसार की आत्माओं को मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दो। क्योंकि वर्तमान समय संसार के जो भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं की मनसा, उनका मन भटका हुआ है, यहां वहां भाग रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह, बेकाबू घोड़े की तरह, क्योंकि उनको स्थायी सुख शांति नहीं मिल रही है, स्थायी खुशी नहीं मिल रही है, स्थायी प्यार नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कि आपको जो मिला हुआ है उन आत्माओं को मनसा के द्वारा भी बांटो, क्योंकि दुनिया की सभी आत्माओं को आप कर्म के द्वारा या वाचा के द्वारा इनको ये खजाने नहीं दे सकेंगे, लेकिन मनसा के द्वारा आप एक स्थान पर रहते हुए भी सारे संसार की आत्माओं को ये सब प्राप्तियां करा सकते हो। तो मनसा के द्वारा बाबा ने कहा शक्तियों का दान दो, उनके मन को क्या करो, सुख दो, उनके मन को शक्तिशाली बनाओ। और आगे बाबा कहते हैं कि संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना, क्योंकि संगम युग पर स्वयं भगवान इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो इसलिए हमारा भी विशेष कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, पहले स्व का और साथ साथ सर्व का। तो ऐसे कल्याण करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो तो बाबा कहते हैं कि पहले अपने आप को देखो, चेक करो कि हमारे में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, कि हमारे पास इतना खजाना है जो हम सबका कल्याण कर सकते हैं। अपने में इतनी हिम्मत है तो पहले स्वयं को देखो। बाबा कहते हैं किसी के वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। दुनिया का वायुमंडल है अकल्याण का और आपका वायुमंडल है कल्याण का, क्योंकि हमारे संकल्प, हमारी फीलिंग, हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल सभी कैसे हैं, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी है, पावर है। और दुनिया के जो भी आत्माएं हैं उनके संकल्प, उनकी भावनाएं, उनकी वृत्ति, दृष्टि, वो सब नेगेटिव है। तो दुनिया का जो वायुमंडल है वो सब तमो प्रधान है, अकल्याण का है। तो बाबा कहते हैं आपका वायुमंडल कल्याण का है। तो किसी के वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। तो बाबा ने कहा अपने आप को देखो, चेक करो कि दुनिया का वायुमंडल अकल्याण का है और आपका वायुमंडल कल्याण करने का है। तो अकल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली या कल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली? तो आपके ऊपर औरों का वायुमंडल प्रभाव नहीं कर सकता। बाबा को हमारे पर इतना विश्वास है, फेत है कि हमारे बच्चे इतने शक्तिशाली हैं जो किसी के प्रभाव में नहीं आने वाले हैं, अपना प्रभाव सभी पर डालने वाले हैं। समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं, शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते हैं वो कमजोर है और आप शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली कमजोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है, कमजोर शक्तिशाली के ऊपर नहीं। तो कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल हो लेकिन आप सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो। तो हमें विशेष एक बात ये याद रखनी है कि हमारा साथी कौन, क्योंकि जब हम बाप को भूलते हैं तभी क्या होता है, हम स्वयं भी कमजोर बन जाते हैं। क्योंकि बाप को भूलने से जो बाप से हमें एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, वो मिलना बंद हो जाती है। और हमारे जो स्वयं की एनर्जी है वो कभी काम करती है, कभी नहीं भी करती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना के रखेंगे तो आपको स्वयं के बारे में भी याद रहेगा कि मैं कौन, हमारा फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है, और हमारा साथी कौन, कितना समर्थ है, जिसका यादगार कहाँ दिखाया हुआ है, महाभारत में पांडवों के रूप में। पांडवों को क्या नशा था कि हमारा साथी हमारे साथ स्वयं भगवान है। तो बाबा कहते हैं आपके साथी स्वयं बाप है। तो कितनी शक्ति हो गई? तो बाबा ने कहा कि समय की भी शक्ति, स्वयं की भी शक्ति और बाप की भी शक्ति। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर अनुभव नहीं करना है कि हम कमजोर हैं, क्या करें, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे में इतनी ताकत नहीं है। बाबा हम सभी को याद दिला रहे हैं कि वर्तमान का समय जो है वो समय भी कल्याणकारी है। तो समय की भी शक्ति है और भगवान की भी शक्ति है, साथ साथ हम स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा है, तो हमारे भी शक्ति है, तीनों शक्तियां काम कर रही हैं। तो यह याद रखो, क्या याद रखो कि दुनिया के लिए अकल्याण का समय है। दुनिया में जो भी आत्माएं हैं उनके लिए अकल्याण का समय है, क्योंकि दुनिया में हलचल है, बढ़ रही है और बढ़ती रहेंगे। तो दुनिया के लिए अकल्याण का समय है, आपके लिए कल्याण का समय है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है कि विनाश सामने है, और हम बच्चों को विनाश के साथ साथ स्थापना और उसके बाद भविष्य नई दुनिया दिखाई देती है। तो आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है, तो सदा दिल में यह श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई की हुई। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, जैसे वर्तमान स्पष्ट है ऐसे ही भविष्य भी स्पष्ट हो। आगे बाबा माताओं के लिए बहनों के लिए कह रहे हैं कि शक्तियों को तो नशा होना चाहिए। किस बात का? शिव बाबा है और तो बाबा ने कहा शक्तियों को तो नशा होना चाहिए कि संयम योग विशेष। किसका योग है? शक्तियों का योग है। संयम पर भगवान ने शक्तियों को आगे किया हुआ है। संगम पर ही बाप शक्तियों को आगे करते हैं और पांडवों को भी खुशी होती है। क्या खुशी होती है? खुशी होती है कि शक्तियां आगे हैं तो हम आगे हैं ही, हमारी सेफ्टी है, शक्तियां हमारे लिए ढाल है। और बाबा ने कहा सदा मन में यही शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। तो सर्व में कौन कौन आता है? सर्व का कल्याण हो। इस संसार में सभी आत्माओं का कल्याण हो और साथ साथ प्रकृति का भी कल्याण हो, क्योंकि वर्तमान समय प्रकृति भी परेशान है, दुखी है, थकी हुई है, डिस्टर्ब है, अपसेट है। तो बाबा कहते हैं कि आपके अंदर ये संकल्प हो कि प्रकृति का भी कल्याण हो, क्योंकि हम सभी प्रकृतिपति हैं, प्रकृति के मालिक हैं। तो बाबा ने कहा प्रकृति शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करते हैं, कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हो, क्योंकि पुरुष हो ना, आत्मा पुरुष है, तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है। प्रकृति को प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। बाबा ने कहा इस समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। जैसे वर्तमान समय अभी कश्मीर में क्या हुआ, बारिश, तो प्रकृति भी वर्तमान समय कितना दुख देती है। बेमौसम बारिश, बेमौसम कोई भी समस्या है। तो बाबा ने कहा थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ा सा धरनी हलचल में आई, कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदायी प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदायी है। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो, तो दुख की लहर आती है। बाबा पूछ रहे हैं कि कोई भी दुख की लहर, दुख की घटना देखते हो तो उसमें दुख की लहर आती है। कभी पोतरा दोतरा दुखी होता हो तो दुख की लहर आती है। बाबा ने कहा स्वयं के सीट पर रहेंगे, श्रेष्ठ सम्मान में रहेंगे, साक्षी होकर के रहेंगे तो दुख की लहर नहीं आएगी। यदि हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो दुख की अनुभूति जरूर होगी। प्रकृति हमारे लिए सुखदायी कैसे है? बाबा ने कहा कि प्रकृति जो है वो आपके सहयोगी है, तो आप प्रकृति के लिए जो जो उसको मनसा से सहयोग दे रहे हैं, तो जब आपके सामने कोई ऐसी समस्या आएगी या दुनिया में जब भी कोई ऐसी हलचल होगी तो उसमें प्रकृति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उस समय आपको सहयोग देगी, क्योंकि उस समय हम अपने समान में होंगे, अपने श्रेष्ठ सीट पर होंगे। तो जहां आत्मा अपनी पोजीशन पर है तो वहां प्रकृति मालिक के आगे दासी बन के रहेगी, क्योंकि आत्मा मालिक है, प्रकृति पति है, जागृत कर रही है। सब जगह जाएगी। तो बाबा ने कहा कि आप संगम युग पर हो, संगम युग पर हो या कलयुग में हो, तो दुख धाम से किनारा कर लिया या थोड़ा थोड़ा दुख धाम से लगाव है, बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो, तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याण करे और समय भी कल्याण करे, तो इस स्मृति से सदा ही क्या बन जाएंगे, माया जीत प्रकृति जीत बन रहेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो, कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो ना, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। ओम शांति।
ओम शांति। अरविंद भाई ने इतने अच्छे से बताया कि कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, एक एक बात किया रिकॉर्ड करने जैसा कर दिया ना। दादियों का पूरा ले लिया। तो बाबा ने क्या कहा, विश्व कल्याण कर, विश्व कल्याण और स्व कल्याण साथ साथ हो। कभी बाबा कहते हैं कि स्व कल्याण पहले करो फिर विश्व कल्याण कर सकोगे, कभी कहते हैं विश्व कल्याण करते करते स्व कल्याण हो जाएगा। आज कहा स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण, तो दोनों ही चीजें साथ साथ करो। विश्व कल्याण और प्रकृति, जैसे कहा कि हमको केवल आत्माओं का कल्याण नहीं करना है, प्रकृति का भी कल्याण करना है। प्रकृति अति ग्रहणशील है, सेंसिटिव है, हम जो भी वाइब्रेशंस उसको देंगे वो तुरंत ग्रहण करेगी। और बाबा ने कहा संसार के लिए प्रकृति दुखदायी है परंतु आपके लिए सुखदायी है। वो सभी आत्माएं जिन्होंने प्रकृति को वाइब्रेशंस दिए है, प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तो ये हमारा एक विशेष कर्तव्य है कि हम 24 घंटे में दो बार प्रकृति को सकाश देनी है, पांचों तत्वों को सकाश देनी है प्रकृति के, क्योंकि महाविनाश जब होगा तो प्रकृति किसी को नहीं देखेगी उसको। पर वो जो आत्माएं हैं कि जिन्होंने उसको सकाश दिया है, जिन्होंने उसको धन्यवाद दिया है, क्योंकि प्रकृति ने हमारी कितनी लंबा समय से सेवा की है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये पांचों ही युग, चारों ही युग उसने सेवा की और संगम युग तो है ही, तो उसकी सेवा का रिटर्न में उसको धन्यवाद करना एक, और दूसरा उसको सकाश देना, क्योंकि इस समय प्रकृति थकी हुई है। इतना समय उसने हमारी सेवा की, अभी हमें उसकी सेवा करनी है, और उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा है कि उसको श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना। तो ये सेवा हमको रोज करनी है, एक बार सुबह पांचों तत्वों को वाइब्रेशन देना, एक बार शाम को पांचों तत्वों को वाइब्रेशन देना। आकाश में मैं स्थित हूँ, मुझसे पवित्रता की किरणें निकलकर संपूर्ण आकाश को जा रही है, फिर आकाश में सूर्य चांद सितारे उनको भी किरणें जा रही है, ग्रह जो है उनको भी किरणें जा रही है, फिर नीचे उतरना वायुमंडल को, प्रकृति वायुमंडल को सकाश देना, धरती पर जैसे हम खड़े हैं ग्लोब के ऊपर और पैरों से पवित्रता की किरणें संपूर्ण ग्लोब को जा रही है, तो ग्लोब को सकाश, फिर और भी उसके इसमें जो समुद्र है उसको सकाश, जल को सकाश, अग्नि को सकाश, जमीन को सकाश, ये सब पांचों ही तत्वों को हमको सकाश एक बार सुबह देनी है और एक बार शाम को देनी है बिना भूले। और दूसरा आत्माओं को सकाश, जैसे संडे की मुरली में था बाबा ने कहा कि बस गुड़ियों के खेल में लगे हुए हो क्या, तुमको आवाज भी आती है, पुकार सुनाई देती है, किस किस की पुकार, आत्माओं की पुकार, दुखी अशांत आत्माओं की पुकार, दुखी अशांत आत्माओं की पुकार, समय की पुकार, प्रकृति की पुकार, और तीन सत्ताएं बताई थी। कौन सी तीन सत्ताएं, वैज्ञानिक, राजनेता और धर्म। तो ये सभी की पुकार, और भी संसार के भक्तों की पुकार, सन्यासी आत्माएं हैं उनका भी कल्याण करना है, अज्ञानी आत्माएं, विकारी आत्माएं, तो ये सभी का, उसमें जानवर भी आ जाएंगे, सब सब जितनी आत्माएं विश्व कल्याण करी अर्थात कोई एक आत्मा नहीं, सभी का कल्याण करना है, सभी के प्रति शुभकामना, चाहे आत्माएं हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे कुछ भी हो, स्थान भी हो, सब स्थान हमारे जो स्थान है, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, सभी को हमको शक्तियां बढ़नी है सभी में। तो ये हमारा विशेष कर्तव्य हमको भूलना नहीं है, ठीक है। और एक आज के वरदान में बाबा ने एक बहुत अच्छी जो बात कही है जो मुझे अच्छी लगी कि बाबा ने कहा सबके प्रति शुभ भावना हो परंतु किसी विशेष आत्मा के प्रति विशेष भावना, किसी एक के प्रति कोई विशेष भावना रखना ये नुकसान कर रहे। इतनी भावना रखते रखते उसके लिए भगवान न बन जाओ। भगवान या इस तरह ना हो जाए कि हम उसमें बंध जाए एक ही आत्मा में, तो बेहद की भावना है किसी एक के प्रति नहीं सारे विश्व के प्रति। तो आज का समान मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तीनों ही शक्तियां हमारे साथ, तीन या चार ले लो, मैं शक्तिशाली, बाप सब बाप, समय और प्रकृति, चारों ही शक्तियां एक साथ काम कर रही है। तो अनंत शक्तियां हमें समाई हुई है। कल के लिए, कल को नागेश भाई के और परसों शायद मूवी खत्म हो रही है, फिर बताना। हाँ आप अभी नेक्स्ट मूवी इसमें कि दो पैराग्राफ निखिलेश भाई, दो पैराग्राफ आपके लिए, ठीक है। हाँ, और आगे के दो पैराग्राफ मंजू बहन के लिए, ठीक है। आगे का पूरा मंजू बहन के लिए, फर्स्ट टू आपके लिए और बाकी फिर मंजू बहन के लिए। हाँ, यहाँ तक एकाग्रता की शक्ति। अच्छा,
दो पेज आपके लिए।
ओम शांति।
नंबर 9 10 9 10।